الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان کا بہترین عشرہ چل رہا ہے اور اس کی آخری آخری راتیں ہیں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ دن بھی گزر جائیں گے. یہ راتیں جن کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان راتوں میں اپنا تہبند کس لیا کرتے تھے، اور اس کے دو معنی ہیں. یعنی ایک تو یہ معنی کہ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق، جو بالکل جائز ہے اور حلال ہے، وہ بھی ترک کر دیتے تھے. جو انسان کی ضرورت ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. سوچ لیں، اگر حلال اور جائز کو چھوڑ دیا ان راتوں میں، تو وہ چیزیں جو بیکار ہیں، میلے ٹھیلے، شاپنگ، گرینڈ سیری پارٹیز، گپ شپ، یہ ان راتوں میں کیسے جائز ہو گیا؟ بہت وقت ہے ان کے لیے. سال بھر میں ہم یہی تو کرتے رہتے ہیں. کیا ان راتوں میں بھی ہم اپنے آپ کو فوکس نہیں کر سکتے؟ دوسرا معنی تہبند کس لینے کا کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان راتوں کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بس صرف 27ویں کو عبادت کرنی ہے. یا جو کچھ لوگ تھوڑا سا تھوڑی ان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ صرف تاک راتوں میں عبادت کرنی ہے. باقی جو راتیں تاک نہیں ہیں، وہ تو عام سی راتیں ہیں ان کے نزدیک، اس لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں وہ سمجھتے. ان کو سمجھتے ہیں جیسے باقی سال کی راتیں. یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ سنتے ہیں سورت الفجر، والفجر وليال عشر. اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی. علماء کہتے ہیں کہ یہ ذی کا پہلا عشرہ ہے، یا دوسرے علماء کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. پھر علماء نے ان دونوں کو کمبائن کر لیا. انہوں نے کہا کہ یہ پورے سال میں جو افضل ترین دن ہے وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور جو افضل ترین راتیں ہیں پورے سال کی وہ یہ آخری 10 راتیں ہیں. لہٰذا اس عشرے کی ہر رات کی ہی فضیلت ہے. اب جو جتنا زیادہ اجر پانا چاہے اتنی محنت کر لے، جو زیادہ اجر چاہتا ہے اس کو زیادہ ہی کرنا پڑے گا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے لیے اس کے مطابق درجے ہیں جتنا وہ عمل کرے گا. اگر ہم دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، لیکن ہمارا عمل اتنا سست ہے، عمل ہم کرنے کے وقت بیئر منیمم پہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جنت ہی مل جائے صرف تو اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن خواہش ہماری کیا ہے؟ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے جنت میں. تو دیکھیں، اس کے لیے محنت بھی تو اس مطابق ہی کرنی ہوتی ہے. یہ تو فارمولا ہر کوئی جانتا ہے. دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں، جتنا کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کریں گے اتنا ہی ملے گا نا. محنت کرتے وقت ہم فوراً تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر ہمارا دل نہیں لگتا اس میں، ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان 10 راتوں کا، 10 دنوں کا یہ جو آخری عشرہ ہے، اس کا کیوں اعتکاف کرتے تھے؟ وہ صرف تاک راتوں میں اعتکاف کر لیتے، لیکن پورے عشرے کی، یہ سارے دن راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. اس سے ان 10 راتوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان ساری راتوں کی ملکہ جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. جیسے کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، ان کا بادشاہ دن عرفہ کا دن ہے. تو لیلۃ القدر ان دنوں، ان راتوں کی پیک ہے، چوٹی ہے. مگر اس وجہ سے باقی راتوں کی فضیلت کوئی کم نہیں ہو گئی. باقی راتیں عام راتوں کی طرح نہیں ہیں، رمضان کی باقی راتوں کے برابر بھی نہیں ہیں، ان سے بھی زیادہ ہیں. تو لہٰذا ان راتوں میں جیسے ہر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کیا زیادہ کریں، ہم کیا زیادہ کریں، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جیسے ان راتوں کی عبادت، 83 ईयर्स की इबादत से बढ़ के है। तो उलमा कहते हैं कि इन रातों में आप सारी इबादत को कंबाइन कर लें, कोई एक चीज ना करें, ताकि हर इबादत आपके लिए 83 ईयर्स से ज्यादा की हो जाए। जैसे आप सदका करें, तो आप यानी मसलन $10 सदका करते हैं, तो ऐसे ही है जैसे आपने 83 ईयर्स से ज्यादा टाइम तक मुसलसल $10 का सदका किया। अगर आप इसमें नवाफिल पढ़ते हैं, तो ऐसे ही है जैसे आपने 83 ईयर्स से ज्यादा वक्त तक नवाफिल पढ़े हैं। तो हम क्यों नहीं, हम ये चाहेंगे कि सब इबादात को हम कंबाइन कर लें, कुरान पढ़ रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं, तो वो इसी तरह है कि हम यानी 83 ईयर से ज्यादा ही कर रहे हैं। इसीलिए जब हम अपना टाइम इन रातों का मैनेज करें, इसको प्लान करें, तो ऐसे करें कि उसमें हर चीज आ जाए। हम नवाफिल भी पढ़ें, उसमें कुरान पकड़ के पढ़ें, फिर उसके बाद उससे थक जाए तो वैसे ही तिलावत करें, फिर उसके बाद जिक्र के लिए बैठ जाए, तो हमारा जिक्र भी हो गया, दुआएं भी हो गए, कुरान भी हो गया, सदका भी करें इसके अंदर। और लोगों को, जो लोग कुरान की दावत देते हैं, जो बूथ लगाते हैं, वहां पे खड़े हो रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, और ऐसे ही है जैसे 83 ईयर से ज्यादा टाइम तक उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। कितनी खुशकिस्मती की बात है। तो अगर आप रात के चंक्स बना लें, मसलन आप देखिए हर एक की हिम्मत एक जैसी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि सब एक ही काम करें, हर एक के हालात मुख्तलिफ, उम्र का तकाजा अलग है, सेहत डिफरेंट है, हर एक के अपने अपने हालात। आप अपने हालात को देखें, दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। कोई लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, कोई लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे, उनके उसके मुताबिक स्केड्यूल है, कोई लोग फारुकुल बाल हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं, मगर आप अपनी रात को इस तरह से डिवाइड करें कि मिसाल के तौर पे आधा घंटा मैंने कुरान पढ़ना है, आधा घंटा मैंने जिक्र करना है, आधा घंटा मैंने दुआएं करनी है। चलो अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो चलो आप 15-15 मिनट कर लें, मैं 15 मिनट ये करूंगी, लेकिन हर रात में इबादत जरूर करें। प्लीज किसी रात को भी ऐसे ना छोड़ें, और किसी रात की इबादत को ये ना सोचें कि मैं तरावी के बाद शुरू करूंगी, बल्कि उसको पहले से शुरू कर दें, ताकि ज्यादा ज्यादा इबादत आपकी इस रात के अंदर हो सके, तो सारी इबादत को जमा कर लें। अब चूंकि ये वक्त जा रहा है, ये वक्त कीमती वक्त हमारे हाथों से निकल रहा है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा फील होता होगा, लेकिन मुझे आप लोगों से एक जुदाई का सा एहसास होने लगता है, तो मेरा दिल बहुत ही उदास हो जाता है। कहाँ हमारी कुर्बतें इन सारी रातों में रहीं, हर रात आप लोगों के साथ जागने का मौका मिलता है, हर रात हम लोग बातचीत करते हैं, हर रात बैठते हैं अल्लाह ताला को याद करते हैं, मिलके याद करते हैं, एक कनेक्शन सा बन जाता है, एक ताल्लुक सा बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद साल भर के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, आपकी भी कोई ख्वाहिश होगी, मेरी भी ख्वाहिश है, हर एक अपने आप से पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ कि जब ये रमजान खत्म हो, तो मैं अल्लाह ताला के हाँ मेरा क्या मकाम हो। क्या चाहते हैं कि मतलब कैसा क्या होना चाहिए, क्या आप चाहेंगे कि आप अल्लाह ताला के स्पेशल बंदों में शामिल हो जाएं? और हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कि कोई खास किस्म के लोग होते हैं जो स्पेशल कहलाते हैं, हम लोग कहाँ से हो सकते हैं, ये नहीं है। जो अल्लाह ताला के खास लोग हैं, खास देखिए, एक तो हमारा आम लोगों के साथ ताल्लुक होता है, कुछ लोगों के साथ हमारा एक खास ताल्लुक होता है ना, आप समझ सकते हैं कि वो लोगों के साथ हमारा कितना करीबी दिल का ताल्लुक होता है, उनकी एक अलग ही जगह होती है हमारे दिलों में, वो हमारे लिए खास होते हैं, स्पेशल होते हैं, बाकी सब आम होते हैं, अल्लाह ताला के भी कुछ स्पेशल लोग होते हैं, खास लोग होते हैं, जानते हैं वो कौन होते हैं, और आप क्या बनना चाहेंगे वो खास लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुछ लोग अल्लाह ताला के अहल होते हैं और उसके खास बंदे होते हैं, तो सहाबा ने पूछा वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के खास लोग हैं और उसके अहल हैं, जिनको अल्लाह ताला अपना अहल कहता है। अहल, हम अहल किसको कहते हैं, अपनी फैमिली को, अपने करीबी लोगों को, अपने खानदान को, ये अल्लाह ताला एक ऑनर देता है कुछ लोगों के, कि उनको अपने अहल फरमाता है, और खास लोग जिनकी खास वैल्यू है अल्लाह के यहाँ, तो वो कौन लोग हैं? सहाबा भी जानना चाहते थे, तो उन्होंने पूछा कि वो कौन लोग हैं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहलुल कुरान, कुरान वाले लोग। सुबहान अल्लाह, वो लोग जिनका ताल्लुक कुरान के साथ है, और ये कुरान की ही तो बरकतें हैं जिनको, जिसकी वजह से ये रात हमें मिली, क्योंकि इस रात का जो लैलतुल कद्र की खास बात है वो कुरान से ही तो मुतल्लिक है कि इस रात में कुरान उतरा। आप खुद सोचें, इस कुरान के उतरने ने इस रात को कितनी शान दे दी कि ये रात सारी रातों, पूरे साल की सारी रातों में स्पेशल हो गई। ये पूरे साल की रातों की मलिका रात रात है। इसके बराबर कोई रात नहीं है, कोई रात इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। चाहे वो ईदों की रातें हों, चाहे वो किसी कोई भी रातें मुहर्रम की हों, जिलहज की हों, किसी की भी हों, कोई रात लैलतुल कद्र की बराबरी नहीं कर सकती, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और लैलतुल कद्र को ये इतना बड़ा मकाम और मर्तबा किस वजह से मिला? कुरान की वजह से। जिस कलाम ने एक रात को इतनी बड़ी फजीलत बख्श दी, खुद सोचे, वो कुरान उस दिल को, उस इंसान को कितनी बड़ी फजीलत बख्शेगा जो इस कलाम से जुड़ जाए। तो ये बहुत बड़ी सआदत होती है कि कोई इंसान अल्लाह ताला के कलाम के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें भटकने के लिए इस दुनिया में छोड़ नहीं दिया। जो मर्जी करते रहो, मैं तुमसे पूछूंगा जब आओगे तो, अब हम ना हमें पता होता करना क्या है, ना हमें पता होता अल्लाह ताला को खुश कैसे करना है, ना हमें पता होता आखरत क्या है, ना जन्नत का पता होता, ना जहन्नुम का पता होता, ना अल्लाह ताला की कोई मार्फत होती कि अल्लाह ताला कौन है, हमें कुछ भी ना पता होता, टकरे मारते रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा और इंसानियत के लिए इतनी बड़ी एक नेमत उतार दी कि जो इंसानों को अंधेरों से निकाल के नूर में ले आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। बेशक हमने ये जिक्र उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये वो जिक्र है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद ले लिया। हमारे हाथों में नहीं दिया कि तुम कुरान की हिफाजत करो, तुम हिफाजत नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं, ये कभी लॉस्ट नहीं हो सकता जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले ली। इसको मुबारक कलाम फरमाया कि ये किताब मुबारक है, कुरान कहता है कि ये मुबारक है। तो जिसकी जिंदगी में ये आ जाता है ना, उसकी जिंदगी मुबारक हो जाती है, बरकतों से भर जाती है। और अल्लाह ताला खुद अलीम है ना, अल्लाह ताला का इसम एक सिफात, उसके अस्माउ सिफात में से एक सिफत क्या है? अल अलीम, इल्म वाला। इल्म अल्लाह ताला का वस्फ है, और अल्लाह ताला जिसको ये दे दे इल्म, उसके दर्जात वो बुलंद कर देता है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि आदम को सजदा करो, किस वक्त फरमाया? जिस वक्त उनको इल्म दिया, इल्म से उनकी फजीलत हुई। ये नहीं कि वो बॉडी वाइज फरिश्तों से ज्यादा कोई बेहतर, तो इसीलिए तो शैतान ने कहा कि इसको आप क्यों फजीलत दे रहे हैं मेरे ऊपर, ये तो मट्टी से बना हुआ है। वाकई इंसान मट्टी से ही बना था, तो कोई इसके अंदर गलत तो नहीं उसने कहा था, मट्टी से ही बना। लेकिन शर्फ उसका किस वजह से हुआ? इस इल्म की वजह से। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ना सूरह जुमर में, इल्म वाले और बे इल्म, ए नबी आप इन लोगों से पूछें, क्या इल्म वाला और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? फिर इसका जवाब नहीं अल्लाह ताला ने दिया, सिर्फ सवाल किया। इसलिए कि जवाब तो खुद तुम सोच लो ना, फिर जवाब सादा है कि जाहिर है बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा फर्क है इल्म वाले में और बेइल्म। दोनों नमाज पढ़ते होंगे, दोनों कुरान पढ़ते होंगे, दोनों रोजे रखते होंगे, लेकिन जो इल्म वाला है उसकी इबादत बहुत ज्यादा फजीलत वाली है बेइल्म से। इल्म वाला अपने इल्म की बदौलत शैतान के वसवास और उसके फंदे से ज्यादा उसका चांस है कि वो बच जाए, उसके मुकाबले कर सकता है, बेइल्म नहीं कर पाता। बेइल्म इंसान का हाल ये होता है, उसने ये कह दिया, सुना है ऐसे होता है। सुना क्या? सुना आपने कहाँ से? सुना आपने सुना है ताक रातों में ये करना चाहिए, सुना है नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए। बाज लोग ये कहते हैं, इसलिए कि हमारे पास खुद कोई इल्म नहीं, हम बस ही से शी से की बात पे चलते हैं, इधर से किसी ने कुछ बता दिया, उधर से किसी ने कुछ बता दिया, उस पर चल पड़ते, खुद नहीं सोचते। इल्म वो है जो कुरान है और हदीस है, खुद नहीं चाहते कि हम खुद ये सीखें, हम खुद ये समझें। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन दो चीजों को थाम के रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, बट वी चूज कि हम मिसगाइडेड हो, वी चूज इट आर सेल्व्स, क्योंकि हम कुरान और हदीस को छोड़ देते हैं। ये दीन अल्लाह ताला ने इसी का मजमुआ बनाया, कुरान और हदीस। हम दाएं से सुनते हैं, बाएं से सुनते हैं, इधर पढ़ लिया, उधर पढ़ लिया, ना देखा किसने क्या कहा, बस अंधाधुंध चलते जाते, जो कोई बताता है वैसे करते जाते। तो ये नहीं होना चाहिए, ये पाकीज़ा इल्म है, ये बाबरकत इल्म है। इसके लिए अपने सीनों को खोलें, जिस कुरान के साथ आपने रमजान गुजारा है और इसकी तिलावत किया, अब उसको समझने के लिए इरादा कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान इल्म के हसूल के लिए निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। यानी आप समझ लें कि जिस वक्त आप इल्म के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, समझ लें आप जन्नत के रास्ते पर पड़ गए। अब इसकी मंजिल, अगर इस पे चलते रहे ना, तो इसकी मंजिल जन्नत है। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बस सीधे इसके ऊपर ही चलते रहना, और इस रास्ते से कभी वापस नहीं जाना। ये शैतान जरूर दिखाता है, सुझाता है, छोड़ो ये भी कोई काम है करने का, ये तो फारिग लोगों का काम है, चलो इसे बेहतर कोई जॉब ही कर लो, कुछ चलो इसे बेहतर कोई और डिग्री ले लो, तुम्हारे कुछ पैसे ही बन जाएंगे, इसका क्या फायदा। डी ट्रैक करता है, लालच में ना आइएगा। ये इल्म तो ऐन इबादत है, जब तक आप इस इल्म को लेते हैं आप मुसलसल इबादत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए कोई इल्म आपको ये चीज़ दे सकता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्म के लिए फरमाई, कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के किसी घर में भी जमा होते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं या कुरान सीखते हैं सिखाते हैं, तो इन लोगों का मकाम और मर्तबा सोचें कितना बड़ा है, कि अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं उनको घेर लेते हैं और उनके ऊपर सकीनत उतरती है, यानी सकून इत्मीनान। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र ही है जो दिलों को सकून देता है। तो सबसे बड़ा जिक्र क्या है? कुरान और नमाज। फिर इस हदीस में है, फिर अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है, क्या होता है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। नंबर टू, सकीनत उन पे उतरती है, सकून आ जाता है। नंबर थ्री, रहमत अल्लाह ताला की आती है। हम रहमत नहीं चाहते क्या अपने लिए? और फिर अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों में करता है। सुभान अल्लाह, क्या ये अदना सा इंसान इस जमीन का एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, और कहाँ अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन उसका जिक्र करे आसमानों में, और क्या चाहिए होगा इंसान को, क्या और इंसान की ख्वाहिश हो सकती है। इसलिए ये तो समझ लें कि अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है ना, तो उसको ये इल्म देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको अपने दीन की समझ दे देता है। तो अब अगर आप इस रास्ते पे लग जाते हैं ना दीन को सीखने के, तो समझ जाइएगा दिस इज अ साइन कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ भलाई का इरादा कर लिया। जितने आपके कदम इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, समझ लें अल्लाह ताला आपके साथ भलाई चाहता है, ये साइन है। और जो इल्म के हसूल के लिए घर से भी निकलता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। यही वो चीज है जो सदका जारिया भी बनती है। इंसान ये इल्म लेता है, फिर उसके बाद उस पर अमल करता है। जितने लोग उसके देख के अमल करेंगे, और उसके घर वाले, उसके बच्चे, उनमें चेंज आएगा, सब उसके लिए सदका जा रही है। तो क्या अभी भी सोचने की जरूरत है? क्या अभी भी आप समझते हैं कि कल कर लूंगी, अभी वक्त बहुत पड़ा है, कब फिर कर लूंगी, फिर कर लूंगी, जब के जिंदगी का भरोसा नहीं। आप सल्लम ने फरमाया, जिंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले। अभी जिंदगी मिली भी है ना, इसको समझ लेंगे गनीमत है कि मुझे जिंदगी मिली भी है, अभी मौत नहीं आई। सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले, शुक्र करें कि अभी सेहत के दिन हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं आ लगी। और अगर आप इस चीज के इंतजार में हैं कि कोई वक्त ऐसा आ जाएगा जिसमें मैं टोटली फारिग हो जाऊंगी, तो ऐसा कभी नहीं आएगा। जिन हालात में भी हैं, इन मुबारक रातों में आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जितने स्टूडेंट्स भी इस इदारे में पढ़ रहे हैं, वो सब कोई फारिग उल बाल नहीं है। सब माएँ हैं, सब बेटियां हैं, सब बीवियां हैं, कोई जॉब्स भी कर रही हैं। मगर इस इल्म की बरकात में से एक बरकत ये है कि अल्लाह ताला कामों को समेट देता है। अब जाहिर है बरकत कोई चीज ऐसी नहीं है कि उठा के मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जी बरकत, यहाँ पे ये बरकत पड़ी हुई है। फिजिकल तो नहीं है ना कोई चीज, नजर तो नहीं आती ना, मगर आपको खुद पता चलेगा, लोग आपसे कहेंगे आप कैसे कर लेती हैं ये सब कुछ, हमसे तो हो ही नहीं पाता। तब पता चलता है अल्लाह ने बरकत दी हुई है। तो इन रातों में इरादा कीजिए, जब आप इन रातों में किसी काम का भी इरादा करेंगे और उसके लिए स्टेप उठाएंगे ना, तो आपको अजर कितना बड़ा मिल जाएगा सिर्फ इरादा करने पे, कितना बड़ा। वैसे ही अगर इंसान इरादा करे तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, सब अभी उसने किया नहीं होता, सिर्फ इरादा करने पे एक नेकी लिख दी जाती है। और अगर इंसान कर भी ले तो 10 गुना उसको अजर मिलता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि इन रातों में अगर आप इरादा भी करेंगे तो कितना गुना आपका अजर बढ़ जाएगा। अल्लाह की रस्सी को थाम लीजिए, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी फिक्र के, कैसे होगा ये, तो हो गया तो पता नहीं क्या, आसमान गिर पड़ेगा, मेरे काम ही सारे अधूरे रह जाएंगे। नहीं, जब आप अल्लाह के कलाम के बगैर काम कर रहे होते हैं तब आपके काम हो रहे हैं। तो जब अल्लाह के कलाम को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे, बरकत को शामिल कर लेंगे, तो क्या तब काम नहीं होंगे? उन कामों का तो जिम्मा अल्लाह ही ले लेता है। तो खुशी खुशी अपने रब की रस्सी को थामने के लिए पहला कदम जरूर उठाइए। ये तो वो चीज है जो सूरह यूनुस में आता है ना, ये तो वो चीज है जिस पे लोगों को खुशियां मनानी चाहिए, ये हर उस चीज से बेहतर है जिसको लोग जमा कर रहे हैं। तो आपके सामने लिंक भी होगा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, फ्री कोर्सेज में से कोई कोर्स अपने लिए चूज कर लें और इरादा कर लें इस दफा कि अब के इस रमजान में जो कुरान के साथ मैंने वक्त गुजारा है, तो अब ये ताल्लुक खत्म नहीं होगा, ये अब रमजान खत्म हो जाएगा, कुरान से ताल्लुक खत्म नहीं होगा। इसको ताल्लुक को जारी रखिए। आपको लिंक मिल रहे होंगे फ्री कोर्सेज के भी, आपके सामने उम्रे का भी लिंक आ रहा होगा, जो मेरे साथ ग्रुप में जाना चाहते हो वो भी इस लिंक को देख सकते हैं। इरादे कर लें नेकियों के, जितने आप इरादे कर सकते हैं, क्योंकि इरादों के ऊपर भी अजर है, बाकी करवाना अल्लाह ताला का काम है। ये हम सिर्फ इरादा कर सकते हैं, तौफीक सिर्फ अल्लाह ने देनी होती है। और इसके अंदर अपने लिए तौफीक भी मांगिएगा, अल्लाह ताला से हाथ उठा के दुआएं करिएगा कि या अल्लाह मेरे बस में सिर्फ इतना था, मैंने कर दिया, आगे तूने कराना है। एक क्वेश्चन जो 2 दिन से लोग मुझसे पूछ रहे हैं और मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहती हूँ, ताकि आप में से अगर किसी का यह सवाल हो तो उनको जवाब मिल जाए, कि वो हर एक मेरे से ये पूछ रहा है कि क्या इमाम के पीछे जब हम कुराने पाक पकड़ के खड़े होते हैं तो हम खुद भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारा वो कुरान का हिस्सा तो हो गया ना, अब हमें घर जाके तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत। तो याद रखिए, आप इमाम के पीछे कुरान जब पकड़ के खड़े होते हैं तो आपको पढ़ना अलाउड नहीं है, आप खुद नहीं पढ़ सकते। हाँ, आप इमाम का सुन रहे हैं, उसको फॉलो करें बस, आप इसलिए वो खोल के खड़े होते हैं ताकि आप फोकस्ड रहें, आपने पढ़ने के लिए नहीं खोला होता ना, आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं ना कुरान करीम का जो अरेबिक टेक्स्ट है वो पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ सकते, आपने सिर्फ सुनना है और आपकी नजरें वहां होनी चाहिए ताकि आपका ज़हन ना भटके, सिर्फ इसलिए आपको खोल सकते हैं, वरना इसके लिए नहीं आपने खोला हुआ के साथ साथ आप भी पढ़ते जा रहे हैं, साथ इमाम भी पढ़ते जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इमाम के पीछे खामोशी के साथ खड़े होते हैं, आप खुद नहीं पढ़ते, तो पहली तो बात यह कि आप पढ़ ही नहीं सकते इमाम के पीछे, तो फिर तो ये सवाल ही नहीं है कि भाई मेरा हुआ या नहीं, क्योंकि अब दूसरी बात यह कि जो आपने सुना, सुनने में और पढ़ने में फर्क है, आप तिलावत सुनते रहें उसका भी अजर है, लेकिन एक आपका पढ़ना होता है, जैसे आपने अपना कुरान करीम मुकम्मल करना है अगर पढ़ के, तो उसका अलग सवाब है। तो वो आपने पढ़ के अलग खत्म करना है, ठीक है। सुनने वाला अलग रखिए, पढ़ने वाला अलग रखिए। सुनते रहे आप, बेशक सारा दिन सुनते रहे, पाक है ना पाक है, सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप सुनते रहे। लेकिन उसको ये ना सोचें कि वो पढ़ने के बराबर हो गया, पढ़ना और सुनना एक ही हो गया, कुछ को सुन लिया कुछ को पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको पढ़ने वाला अलग कुरान है, सुनने वाला अलग है। तो जो आप इमाम के पीछे कुरान पकड़ के खड़े होते हैं, वो आपका उसमें काउंट नहीं होगा जो आपने खुद पढ़ लिया है घर में, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी सबको।